एक बार सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। हमारे प्रोग्राम के प्रमाण भट्टी का ये लास्ट सेशन है। आप यहाँ पर भट्टी में आए, कुछ लक्ष्य लेकर आए होंगे। उस लक्ष्य को आपने संपन्न किया होगा, अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ अपने मन में प्रतिज्ञाएं भी की होंगी, कुछ अपने प्लान भी बनाए होंगे। यहां हम जब बाबा के घर में होते हैं, यहां का वातावरण, यहां के वाइब्रेशंस, यहां का भोजन, यहां का इस अलौकिक परिवार का संगठन, प्यारे बाबा की मदद हमें बहुत उच्च अवस्था पर ले जाती है। इसको कायम रखना, जैसे आप पिछली क्लास में सुन भी रहे थे कि ब्राह्मण वही है जो रोज बाबा की मुरली सुनता और योग लगाता है। तो मैं दो बातें आपको विशेष रूप से कहना चाहती हूं कि हमेशा अपनी वैल्यू को खुद समझें। बाबा ने हमें बहुत उच्च सीट पर बिठाया है, बहुत ऊंचे स्थान पर बिठाया है। कभी कभी चलते चलते या तो लाइफ में कुछ फेलियर्स आते हैं, फेलियर्स इन द सेंस जो मैंने सोचा था कि मुझे इस कार्य में सफलता मिलेगी, नहीं मिलती है। कभी वो रिपीटेडली होता है तो हमारा अंदर का उमंग उत्साह कम हो जाता है, हमको लगता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माय लाइफ, फायदा क्या हुआ मुझे, बार बार यह सफलता मिलती है। या कभी किन्हीं अन्य कारणों के कारण हम अपनी वैल्यू को, अपनी वर्थ को समझते नहीं है। याद रखिए, कभी भी जो आपको दूसरे लोग कहते हैं उसको अपना ओपिनियन मत बनाइए। नेवर डिफाइन योर सेल्फ विद अदर्स ओपिनियन। एक बार एक यंग बच्चे ने अपनी माँ से पूछा कि मेरी जीवन की क्या वैल्यू है, तो माँ ने कहा, इट्स ए बिग क्वेश्चन कि जीवन की क्या वैल्यू है। उसने कहा, जस्ट एक मिनट रुको। माँ अंदर गई और जाके वापिस आई और अपने बच्चे को कहा कि एक स्टोन हाथ में था उसके, उस स्टोन को देकर कहा कि जाओ तुम इसकी वैल्यू का पता लगा के आओ। बच्चा गया और मार्केट में गया तो वहां एक व्यक्ति खड़ा था, उसको जाके कहा कि इसकी क्या वैल्यू है। तो उसने उस स्टोन को हाथ में पकड़ा, कहा मुझे तो इसकी कोई वैल्यू नजर नहीं आती है कुछ भी, मैं तुमको इसके बदले एक केला दे सकता हूं। बच्चे ने स्टोन वापस ले लिया और आगे गया। वो एक म्यूजियम में पहुंचा जहां पर सब पुरानी चीजें रखी जाती थी और वहां पर जाकर कहा कि इस स्टोन की क्या वैल्यू है। तो उस व्यक्ति ने स्टोन को देखा, अनदेखा करते हुए कहा कि वी डोंट रिक्वायर दिस स्टोन, हमको म्यूजियम में इसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो वहां से भी वो स्टोन लेके चला गया, आगे गया एक ज्वेलर की दुकान पे। जब एक जौहरी की दुकान पर पहुंचा तो जौहरी ने उस स्टोन को पकड़ा, उसको बहुत ध्यान से देखा, परखा और देखते देखते उसने उसको कहा, दिस इज ए प्रेशियस स्टोन और ये बहुत कीमती स्टोन है और इसकी कीमत क्या होगी वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि ये अमूल्य है, ये प्राइसलेस है। मीन्स इतना ये स्टोन कीमती है कि इसकी कीमत नहीं आंकी जा सकती। तो बच्चा ये सब करके वापस आया घर और अपनी माँ को सारी बात बताई, तो उसके माँ ने उसको जवाब दिया कि देखो बेटा, हर व्यक्ति जो होता है ना, वो क्या करता है, वो दूसरों को कैसे देखता है, वो दूसरों को अपना ओपिनियन दूसरों के बारे में कैसे बनाते हैं, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखते हैं, उनका आप में कितना विश्वास है उस दृष्टिकोण से देखते हैं, और कितनी और किस लेवल की इन्फॉर्मेशन आपके बारे में उनके पास है। ये तीन चीजें, एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू, एक हाउ मच इन्फॉर्मेशन दे हैव अबाउट यू, एंड थर्ड इज कि हाउ मच दे बिलीव इन यू, उसके हिसाब से वो आपको समझते हैं। इसीलिए तुम कभी भी अपनी कीमत को कम नहीं करना, तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है, यू आर प्राइसलेस फॉर मी। सिमिलरली प्यारे बाप दादा ने हम बच्चों को कहां कहां से चुना, आप भारत के कोने कोने से, कोई दूर दराज से, कोई छोटे शहरों में, कोई गांवों में रहने वाले, कोई मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहने वाले, कोई कुछ करने वाले, कहां कहां से बाबा ने आपको चुनकर लाया। ऑलवेज रिमेम्बर, मेरी वैल्यू जो बाबा ने की है उस वैल्यू को मुझे समझना है और उस वैल्यू को कभी कम नहीं करना है। एक ये बात, और दूसरी बात मैं ये कहूंगी, क्योंकि हम जिस सदी में रह रहे हैं और जिस वातावरण में रह रहे हैं उसमें नेगेटिविटी बहुत जल्दी से फैल जाती है, और आप हम सभी इस बात के अनुभवी हैं कि नेगेटिविटी जल्दी से असर करती है। तो एक बार एक माँ जो है वो बहुत उदास होकर डाइनिंग टेबल पर बैठी थी, ये दो मैं किस्से आपको सुना रही, दूसरा किस्सा है, और वो सोच रही थी कि मुझे कितना काम करना पड़ता है, सारा टाइम काम करते रहो, नौकरी भी करो, घर में रिश्तेदारों को भी देखो, घर का भी काम करो, सारा दिन काम काम, ऐसे निराश होकर वो बैठी थी। बाजू में पास में उसकी बेटी बैठी थी तो, और बेटी कुछ लिख रही थी, तो उसकी माँ ने पूछा अपनी बेटी से कि आप क्या कर रही हो, तो बेटी ने जवाब दिया कि आज मेरी टीचर ने मुझे एक होमवर्क दिया है, और होमवर्क क्या है कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ नेगेटिव, उसका उसके ऊपर आप एक पैराग्राफ लिखो। तो मैंने जो बेटी ने क्या लिखा, तो माँ ने उसकी नोटबुक उठा के पढ़ी, उसने लिखा था मुझे एग्जामिनेशन बहुत अच्छे लगते हैं, फाइनल एग्जामिनेशन, क्योंकि उसके बाद लंबी छुट्टी मिलती है, मुझे जो डॉक्टर से कड़वी दवाई मिलती है वो कड़वी दवाई खाना भी मुझे अच्छा लगता है क्योंकि उससे मेरी हेल्थ बनती है, लाइक दैट उसने बहुत सारी बातें लिखी थी। पढ़ते पढ़ते माँ ने सोचा कि मेरे पास भी तो, मेरे लिए भी तो कुछ हो सकता है ना। नाउ शी स्टार्टेड थिंकिंग, वो क्या सोच रही थी, मुझे कितना काम करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो उसको मन में आया कि मैं नौकरी करती हूँ, मुझे मेहनत करनी पड़ती है, इट मीन्स आई हैव ए गुड जॉब जिससे मुझे अच्छी सैलरी मिलती है, मुझे घर का बहुत सारा काम करना पड़ता है, इट मीन्स आई हैव ए फैमिली, मेरा अपना एक घर है, एक आश्रय का स्थान है मेरा, मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, बहुत सारे रिश्तेदार हैं, इसका मतलब मेरे इतने रिश्तेदार हैं जिनके साथ मैं सेलिब्रेट कर सकती हूँ। मैं ये बात सुना के आपको क्या कहना चाहती हूँ कि कितनी भी नेगेटिविटी आ जाए, बाबा ने हम बच्चों में ये कला भरी है कि आप नेगेटिव को भी पॉजिटिव में कर दें। तो ये बात آپ یہاں سے اس بھرتی سے لے کر جائیں گے. اور اب ہم انوبھووں کی لین دین یہاں سے شروع کریں گے. دیکھیے دل تو ایسا کرتا ہے, اگر میں آپ کو اپنے من کی سچی بات بتاؤں, کہ ایک ایک کمار کا ایک ایک بھائی کا انوبھو سنیں. لیکن آپ سوچیں کیا یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے؟ یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. اسی لیے ہمارے پاس انوبھو سنانے کے لیے بہت لوگ کہنے کے لیے آئے. ہم نے کہا کہ ایک جگہ سے دو ویکتی بالکل نہیں ہونے چاہیے, کچھ الگ الگ جگہ سے ہوں, کچھ ادھر کمار ہوں اور کچھ کمار ہوں, اور وہ اپنا انوبھو شیئر کریں. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتی ہوں, آپ کے من میں بہت اچھا ہوتی ہے, اتنا بڑا بےحد کا سنگٹھن, پیارا سنگٹھن ملا ہے, جہاں مدھوبن کا اتنا بڑا پریوار ہے, اس کے بیچ میں ہم اپنی کچھ پرفارمنس دیں, ہم اپنی کلا کا پردرشن کریں. میں سمجھتی یہ ہر ایک کا دل ہوتا ہے, آپ کی بات صحیح ہے, لیکن ہر ایک کی کلا کا پردرشن اس منچ پر کرنا سمبھو نہیں ہے. اور بابا نے ابھی ہم بچوں کو زیادہ سے زیادہ گیان اور یوگ کی مستی میں مست رہنے کے لیے کہا ہے. اسی لیے کوئی بھی اس بات سے یہ نہیں سوچنا کہ دیدی نے یا بہن نے ہم کو سمے نہیں دیا. آپ سمجھ لینا کہ اتنا ہی ایسا ہی تھا, اس لیے جو میرے پاس نام آ چکے ہیں ان ناموں میں سے میں نام بلاتی جاؤں گی, آپ ترنت آتے جائیں گے, ٹائم نہیں لگائیں گے. اور دوسری بات, انوبھو سنانے کے لیے کوئی بھومی کا تیار نہیں کریں گے. آپ بالکل ٹو دا پوائنٹ, ہم جب اسکول اینڈ کالجز میں ہوتے ہیں پریسی لکھتے ہیں, آپ کو معلوم ہوگا ایک بڑا پیج دیا جاتا ہے, اس کو پریسائز کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ تھوڑے شبدوں میں تھوڑے واقعوں میں اس کو لکھ دو. تو آپ انوبھو کو بھی اپنی چند لائنوں میں سمیٹ لیجیے اور اس کے بعد یہاں آ کر آپ شیئر کیجیے. سب سے پہلے میں بلانا چاہوں گی پونا کے شیوم بھائی. میں نام بتا دیتی ہوں, سب بھائی ادھر آ کے کھڑے ہو جائیں گے دھیرے دھیرے. آشیش درگ سے ہیں, جے پور سے منیش بھائی ہیں, بھوپال سے آدتیہ بھائی, کولکتہ میوزیم سے دیواشیش, پونے کوارٹر گیٹ سے دھناجی بھائی, بلاسپور اندور زون سے ریتیش بھائی, احمد آباد سے پنکج بھائی اور سارنگپور سے ودیادھر بھائی. آپ لوگ سب ادھر آ کے کھڑے ہو جائیں گے اور ہم ایک ایک کو بلاتے جائیں گے اور آتے جائیں گے. پونا کے شیوم بھائی آئیں گے. آپ کو دو سے ڈھائی منٹ میں اپنا انوبھو سنانا ہے.
اوم شانتی. میرے شریر کا نام ہے شبھم. میں زیادہ لمبا نہیں بولنا چاہوں گا, شروعات سے ہی کروں گا کہ بابا نے ایسے ایسے انوبھو کرائے ہیں کہ جیسے میں سائنس کا اسٹوڈینٹ ہوں تو میرا من تھا من وگیان کی طرف, ہے نا, سائنس کی طرف, کہ مجھے کچھ ایسا ملے. بھگوان کو تو بھی کھوجتے ہیں نا, تو میں بھی بھگوان کو کھوج رہا تھا کہ بھگوان کہاں ہے کہاں ہے, مورتی پوجا کری, یہ کیا وہ کیا, پر وہ ہوتے نا فیلنگس, ہے نا, وہ کہیں مل نہیں رہا تھا. تو کہیں سے بابا نے کیا ٹچنگ کرائی کہ 11th کلاس کے بعد یہ چھٹیاں پڑ دیا نا, تو چھٹیوں میں لوگ کام کرتے ہیں کچھ کچھ, ہے نا, تو یہ کچھ کام کرنے لگا تھا. تو پھر ایک بار کیا آیا کہ میں ٹی وی یا دیکھتا تھا, کہتے ٹی وی دیکھنا نہیں چاہیے, پر مجھے ٹی وی سے بہت فائدہ ملا. کیسے کہ جیسے میں شام کے ٹائم ٹی وی ایک بار دیکھ رہا تھا تو ڈسک پہ ایک نام آتا تھا پیس آف مائنڈ, وہ چینل چل نہیں رہا تھا, پر وہ پیس آف مائنڈ مطلب من کی پاور, ہے نا, من کی شانتی, یہ تو چینل بہت اچھا ہے, مجھے دیکھنا چاہیے کیونکہ میں تو میرا سبجیکٹ ہی ہے نا. تو میں نے جب دیکھا شام کے سمے جو اپنی شیوانی بہن جی ہیں ان کے پروگرام آ رہا تھا. ٹھیک ہے
بھائی جی, آپ بھٹی کا انوبھو سنائیے بس, باقی کچھ نہیں. شیوانی بہن کا کچھ نہیں, یوٹیوب کچھ نہیں, نہیں آپ بھٹی کا انوبھو سنائیے. ہاں جی
ٹھیک ہے. تو بابا نے آج دیکھیے بھٹی کا میں بتانا چاہوں گا, جیسے بھٹی میں میرے یہاں آنے کے لیے مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ میں بھٹی میں آ پاؤں گا یا نہیں آ پاؤں گا, کیونکہ مجھے سمے نہیں ہوا ہے زیادہ گیان میں آتے ہوئے, دو سال ہی ہوئے ہیں, تو مجھے پتا نہیں تھا بھٹی میں آ پاؤں گا نہیں آ پاؤں گا. پر بابا نے پتا نہیں کہاں سے مدد کری, کیونکہ آج پرابلم ہو رہی ہے سبھی کی, پیسہ, میرے پاس پیسے نہیں تھے آنے کے لیے, یہ کیسے آنا ہے. बाबा ने एक फरिश्ता भेजा मेरे पास कि बच्चे तुझे इसके तहत जाना है, है ना। वाह बाबा, आप कहाँ ना कहीं से बुला देते हैं। इसे मैं यहाँ पे आया तो ऐसे इसे काफी क्लासेस अटेंड की, है ना, काफी अनुभव भी हुए। एक बार मैं योग में बैठा हुआ था तो मैंने बाबा से बोला, बाबा मुझे अपने दर्शन करना है कि मैं पॉइंट ऑफ लाइट कैसे दिखाई देती हूँ। बाबा ने वो भी अनुभव कराया। योग में बैठा हुआ तो पॉइंट ऑफ लाइट चमक रही व्हाइट, है ना। और जब मैं ट्रेन में एक बार आ रहा था तो जैसे बोलते ना थोड़ी आंखें बंद थी, है ना, थोड़ी नींद भी थी। जब मैंने आंखें खोली तो बाबा ने एक रेड लाइट थी और इतनी बेहतरीन प्रकाश आ रहा, उससे इतनी पावर मिल रही मेरे को। वाह बाबा, जो मैंने सोचा कि आपने अपना दर्शन दे दिया। जिस खुदा को सब ढूंढते हैं उस खुदा ने मुझे ढूंढा, है ना। तो आज ठीक है, और भी सुनाना था, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है और सुनाने को, बस शुरू से
बच्चों
का। हाँ, और भी ठीक है। ओम शांति जी।
भोपाल के आदित्य भाई आएंगे और चेन्नई के श्याम नारायण भाई तैयार रहें। अशोक भाई आपको बुला रहे हैं।
ओम शांति। सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि बाबा हमें 2010 में मिला, 2010 में हम 11 साल के थे तब। तो ये जो अनुभव है ये वो 11 साल के बच्चे का अनुभव है। तो हम स्कूल में थे 7th क्लास में, तो बाबा का पहले ज्ञान इतना क्लियर समझ में नहीं आता था। मम्मी हमारी ज्ञान में, लौकिक माता, वो गई ज्ञान में, तो हम उनके साथ आश्रम जाते थे, अच्छा लगता था संगठन में बैठना। तो बाबा को हम ऐसे भगवान ऐसे आश्रम जाते हैं कहीं भी ऐसे मंदिर में तो ऐसे याद करते थे। तो एक दिन हम स्कूल जा रहे थे, बस में एक भाई से लड़ाई हो गई, बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी, मारपीट हो गई कुछ। तो हम घर आके बहुत रोए, मम्मी से कहा मम्मी स्कूल चलो, वो भाई बहुत परेशान कर रहा है, वो भाई ने धमकी दिया है कि तुम कल स्कूल आओगे तो हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम बहुत डर गए थे, वो बहुत बड़ा भाई था। तो मम्मी बोलती हैं कि बेटा बाबा ही तुम्हारा पिता है, बाबा ही तुम्हारा प्रोटेक्टर है, बाबा से बोलो। तो हमने रात भर बाबा के पास बैठ के रोते रहे, नींद नहीं आई उस रात को। अगले दिन कांपते हुए हाथ में पसीना आ रहा था, पूरी ड्रेस गीली हो गई। गए बस के अंदर बैठे तो सब लोग देख रहे थे। तो बाबा का अनुभव ये था कि गए तो वो भाई सब हमें देख रहे हैं कि कहाँ पर है वो भाई, और हम जाके बैठ गए कि आज तो पिटने वाले हैं। बैठे पर वो भाई पूरे समय कहीं नहीं मिला। अंत में पता चला वो हमारे बाजू में बैठा हुआ था, पर उसने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप शांति से बैठा रहा। तो बचपन का ये बाबा का अनुभव आज भी जब हम याद करते हैं, और भट्टी में इस बार हम पहली बार आए हैं, तो बाबा वो अनुभव बार बार याद दिलाता है और इतनी शक्तियां भरता है बाबा, कुमार जीवन मतलब आनंद आ जाता है। और हमें एक फरिश्ता इस बार मिला, वो भाई हमें लेके आया, तो उस रितांशु भाई आपका थैंक यू बहुत। और वाह बाबा वाह।
आप भाइयों से अनुरोध है कि आप केवल ये जो 4 दिन के भट्टी का अनुभव है उसको ही शेयर करेंगे। चेन्नई के भाई आएंगे, श्याम नारायण भाई। इसके बाद जयपुर के मनीष भाई तैयार रहे, वो अपनी बाबा से रूरिहान सुनाएंगे। जयपुर के मनीष भाई।
ओम शांति। मैं श्याम नारायण चेन्नई से। मैं पहले बाबा इस बार मुझको भट्टी में पहले बार आ रहा मधुबन को, तमिलनाडु में हमेशा भट्टी अटेंड करता है। इस बार बाबा 2 विशेष अनुभव दिया था भट्टी में। 24th सूरज भाई बोला सोमान का शक्ति, मतलब सोमान में इतना शक्ति है। मैं इनके पहले इस फरमान को यूज करते हैं लेकिन इतना डेप्थ में यूज नहीं किया है. तो सुरेश माई बोला ऐसा सुबह उठकर ऐसा फरमान में आप इतना बार बोलेंगे तो आपको बहुत शक्ति आएंगे. तो 25th क्या हुआ, मेरे को एक स्वाभाविक है मैं हर रोज कम से कम 6 घंटे नहीं सोएंगे तो मेरे को स्लीप आता है, नींद आता है. तो क्या हुआ 25th में 5 घंटे में मुझको समय मिला सोने के लिए. तो सुबह 3:30 उठा है, बहुत हेवी मिला है, ऐसा मन नहीं है योग करने के लिए. फिर मेरे को एक सोमान का शक्ति मेरे को याद आया है. मैं उस बार क्या किया, डायमंड नहीं आया, टेरेस गया है. मेरे को थोड़ा डाउट है डायमंड वाले गाएंगे तो सोएंगे तो अच्छा नहीं लगता, टेरेस गया उधर ब्रह्मलोक में. तो सिर्फ ओ सोमान मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाश स्वराज्य अधिकारी ये 3 सोमान 3 ही बार रिपीट किया, ज्यादा नहीं 3 ही बार रिपीट किया. मेरे को पता नहीं किधर से इतना शक्ति आया, 4:45 तक इतना पावरफुल योग लगा उस दिन सुबह. मेरे को इतना आश्चर्य है ए सोमान का शक्ति पहले अनुभव किया बाबा मुझको. दूसरा अलौकिक पालना, उषा दीदी ने बोला था कल, उषा दीदी बोला बाबा मुरली में अभी भी अलौकिक पालना दे रहा है. तो क्लास हो गया और योग में बैठा है, मैं बाबा से रू रूहानी कर रहा था, बाबा जैसा मधुबन में आएंगे तो मैं 2 डिजिट याद में रहेंगे, 2 डिजिट मतलब 10 घंटा 11 घंटा, लेकिन लौकिक में गएंगे तो 1 डिजिट होता है 6 घंटे 7 घंटे. मैं बाबा से पूछा कुछ देना बाबा इसको लौकिक में भी 2 डिजिट में करने के लिए. बाबा बोला वतन में ऐसा 3 स्वरूप और 3 दृष्टि में तू हमेशा लगेंगे तो तेरा योग 2 डिजिट आता है. बाबा बोला आत्मिक स्थिति, फरिश्ता स्थिति मतलब स्मृति और देवता स्मृति, यही स्मृति में रहना है और दूसरों को देना है देखना है. बाबा बोल दिया और कल रात को अभ्यास किया, 1 घंटे में पूरा अभ्यास किया लेकिन 4-5 बार भूल गया. तो मेरे को मन में विचार आया ये तो थोड़ा मुश्किल है, ऐसा विचार आया मुझको. तो मैं बाबा से नहीं कहा ये बात, मेरा मन में विचार आया आज सुबह मुरली में बैठा है, बाबा वरदान दिया है, हिम्मत आत्मा है. मेरे को इतना स्पष्ट इतना स्ट्राइकिंग हुआ बाबा मुझको अव्यक्त पालना आज दे दिया है. तो इतना स्पष्ट अव्यक्त पालना, बाबा बोला तुम एक हिम्मत का संकल्प रहेंगे तो मैं इतना तुमको सहयोग देंगे. ये दोनों बहुत विशेष अनुभव बाबा मुझको दिया है. और दूसरा एक छोटे से बात बोलते हैं, मैं कभी इधर आया मेरे रूम में सभी भाई मुझको पूछा था तू कुमार है अदर कुमार है, मैंने बोला मैं कुमार है पहले. अभी आज और कल भाई ने पूछा जैसा इधर डायमंड हॉल में रूम में पूछा था कुमार है अदर कुमार है, मैंने पूछा कुमार है लेकिन शादी हो गया, मेरा साजन उत्तर है. ओम शांति.
थैंक यू मनीष भाई जयपुर के. कुछ अनुभव से हटकर वो अपनी बाबा के साथ रू रिहान पढ़कर सुनाएंगे और शायद आपको मालूम चल जाएगा बाबा के साथ रू रिहान कैसे की जाती है. उसके बाद विद्याधर भाई सारंगपुर MP तैयार रहेंगे. विद्याधर भाई सारंगपुर.
मेरे मालिक मेरे साजन मेरे तो केवल आप ही हो, मेरा भरोसा मेरा सहारा आप ही तो हो. तेरे इस जहां में नहीं कोई हमारा, मेरे साजन मेरे संबंधी मित्रगण सब कुछ आप ही तो हो. आप कितने अच्छे हो ना, हमें रंग से राजा बनाने में आप कितनी मेहनत करते हो. मेरी तरफ से मैं आत्मा आपको कुछ देना चाहती हूँ परंतु क्या दूं, सब कुछ आपका ही तो है. मैं खुद ही आपके हवाले हो जाती हूँ. प्रभु आपने हमें क्या से क्या बना दिया, फर्श से डायरेक्ट अर्श पे, उजड़ी हुई बस्ती से आपने हमें उठाया और राजा बना दिया, बर्बादी के समंदर में आकर आपने हमें गोद में उठा लिया. अब तो मैं आत्मा आपकी हर बात मानूंगी. बाबा जितना आप हमसे प्यार करते हैं हम उससे डबल प्यार करते हैं आपसे। बाबा आपके हिस्से का प्यार आप करो, हमारे हिस्से का प्यार हम करेंगे, लेकिन जितना प्यार आप करेंगे हम तो उससे डबल प्यार करेंगे आपसे। सभी के दिल में भरे नफरत के जहर को आपने ही तो अमृत बनाया। बाबा आपने हमें रूहानी बचपन दिया, मुझे तो इस बचपन में ही जीना है, मुझे तो माया को सबक सिखाना है, माया से बदला लेने जाना है। बाबा हम तो आपकी गोद में ही बैठे रहेंगे, कभी नीचे नहीं उतरेंगे। बाबा आप कहेंगे बच्चे नीचे उतरो और जाओ खेलो, हम फिर भी नीचे नहीं उतरेंगे, आपसे ही चिपके रहेंगे। बाबा बाबा मैं आत्मा आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मुझे तो आपका सपूत बच्चा बनना है और फिर साक्षात बाबा ही बन जाना है। ठीक है बाबा, ओम शांति।
थैंक यू। सभी सजनियां बन गए बाबा की। सारंगपुर से विद्याधर भाई।
ओम शांति। मेरा नाम विद्याधर है, मैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के सारंगपुर सेंटर से आया हूँ और हमारे सेंटर के निमित्त संचालिका भाग्य लक्ष्मी दीदी है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उनके माध्यम से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और यहाँ 5 दिन रहने के बाद जो अनुभव प्राप्त हुआ वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ। वो ये है कि सबसे पहली बात कि हमें यहाँ आने के बाद ज्ञान मिला, ज्ञान ये मिला कि ये दुनिया, पुरानी दुनिया समाप्त होने वाली है और नई दुनिया आने वाली है जिसको हम स्वर्ग कहते हैं। यदि हम 5 विकारों पर जीत पालें तो हम स्वर्ग में जा सकते हैं और इन 5 विकारों पर जीत पाने की विधि बाबा ने हमें बताई कि हम योग के माध्यम से इन विकारों पर जीत पा सकते हैं। तो मैंने यहाँ संकल्प लिया है कि योग के माध्यम से पहले मैं अपने आप को बदलूंगा, फिर मेरे परिवार के सदस्यों को बदलूंगा और फिर मेरे संबंधियों को, रिश्तेदारों को और पड़ोसियों को बदलने का पुरुषार्थ करूंगा। यहाँ पर आने के बाद जो यहाँ का प्रबंध देखा, बड़ी बड़ी बड़े बड़े भवन और हजारों लोगों को एक साथ खाने पीने की व्यवस्था, बैठने सोने की व्यवस्था देखकर ये अमेजिंग लगा। ऐसा महसूस हुआ कि बाबा की मदद के बिना ये नहीं हो सकता है। और अंत में मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि एक कांटेदार जंगलों से, जंगलों में मैं पौधा के स्वरूप था, वहां से बाबा ने उखाड़कर उसके अपने सुंदर बगीचे में, फूलोदार बगीचे में मुझे रोप दिया है आज। और मैं अब पुरुषार्थ के माध्यम से फूल की तरह खिलूंगा और मेरी सुगंध चारों ओर फैलाऊंगा। ओम शांति।
देवाशीष भाई कोलकाता म्यूजियम के। रितेश भाई बिलासपुर वाले तैयार रहे।
ओम शांति। शरीर का नाम देवाशीष भाई, कोलकाता म्यूजियम से। ऐसे तो भट्टी में आके 4 दिन में बाबा ने जो योग तपस्या करवाया उससे तो दिल पूरा भर गया और बाबा को तो आगे कुछ करके दिखाना है। और एक छोटा अनुभव सभी भाइयों के लिए बताना चाहते हैं। ज्ञान में तो चल रहे 8-10 साल हो गया, बाबा ने 1 साल पहले एक पेपर लिया जिसमें भाई को एक्सीडेंट में 40% जलना पड़ा था। जब जल गया तो बाबा 1 मिनट के लिए याद नहीं था, लेकिन 1 मिनट के बाद से जब बाबा याद आना लगा तब धीरे धीरे सब कुछ चेंज हुआ, शुरू हुआ, तो भाई को तो हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, लेकिन बाबा का करिश्मा इतना अच्छा था कि बाबा ने तुरंत भाई को ऑफिस के सारे लोगों को देके प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया। और उसमें जो पूरा खर्चा होता है, एक प्राइवेट कंपनी तो एक रुपया खर्चा किसी के लिए नहीं करता है, लेकिन बाबा ने एक प्राइवेट कंपनी को देके अपने बच्चे को ठीक करने के लिए 19 लाख खर्चा करवाया। उसके अलावा 6 महीने बच्चे को घर में बैठा के बाबा ने ट्रीटमेंट कराया और उसी प्राइवेट कंपनी से 6 महीने का पूरा सैलरी दिलवाया। तो ये बाबा ही कर सकता है, तो जो बाबा के साथ जुड़ा रहता है बाबा उसका सदा साथी बन के रहता है। थैंक यू, ओम शांति।
मैं फिर से आपको याद दिला रही हूँ, आपको अपने पिछले अनुभव शेयर नहीं करने हैं, आप यहाँ भट्टी की अनुभव शेयर करने के लिए आए हैं। दुर्ग के आशीष भाई,
ओम शांति। शरीर का नाम आशीष भाई, दुर्ग छत्तीसगढ़ से, निमित्त टीचर शोभाबेन जी। आज के जो ये 5 दिवसीय जो भट्टी हुई उसका मुख्य अनुभव, ये दूसरी मेरी कुमार की भट्टी है। इसके पहले कुमार की भट्टी मैंने की थी जब रियल में कुमार का दादी थी। जैसे ही भट्टी की शुरुआत हुई 24 जून, मम्मा का पहला दिवस, मम्मा के पहले दिन में ही जैसे हमने एंट्री की यहां पर, तो हर घड़ी अंतिम घड़ी यही मां भाग के लेकर मैंने इस प्रांगण में प्रवेश किया। सभी मधुबन निवासी और सभी दादियों का बहुत बहुत शुक्रिया जो ऐसा जीवन, बाबा का भी शुक्रिया जो ऐसा जीवन दिया बाबन, कुमारों का जीवन। जैसे ही मैं यहां पर बैठा और क्लासेस की शुरुआत होती थी तो कुमार का दादी की याद आई। दादी जी यहां से एंट्री करती थी हाथ हिलाते हुए, एक हाथ में गुलाब का फूल गुलदस्ता होता था, पूरा विजिट करती थी यहां तक। वो सीन वैसे ही वैसा मुझे दिखने लगा, जैसे कि कुमारों को बहुत प्यार करती थी, बोलती थी क्या खाओगे, हम लोग बोलते थे दादी केक खाएंगे, केक बन जाता था, खीर खाएंगे खीर बन जाता था, इतना प्यार। और वही आज फिर से रिपीट हुआ कि आइसक्रीम भी खाए और बहुत कुछ। साथ ही दादी रतन मोहिनी जी भी वैसे ही गुलदस्ते को हिलाती थी, वही स्मृतियां फिर वापस आ गई कि आज हम अकेले नहीं, हमारे साथ एक बहुत बड़ा परिवार है। उस परिवार की फीलिंग, इस भट्टी की शुरुआत हुई बहुत ही सहज तरीके से, बहुत सौम्यता से, और खत्म हुआ धर्मराज की सजाओं के साक्षात्कार से। सचिन भाई की वो बातें, दिल करता है कभी बहन जी से शेयर किया आपने, सेंटर की बहन जी से, कि बहन जी की इच्छा होती है कि काम वासना नरक का द्वार है लेकर तख्ती पर एक रैली निकालें, जो बहुत पहले ब्रह्मा बाबा के समय में निकली थी, उसके बाद से रैली कभी नहीं निकली। एक उमंग भर दिया सचिन भाई ने, लेकिन इस उमंग के साथ साथ बैलेंस सीख कर जा रहे हैं यहां से। बहुत बैलेंस चाहिए कुमार लाइफ में, क्योंकि जोश होता है लेकिन उसमें होश नहीं खोना है, ये बहुत जबरदस्त चीज है। और इसमें खास बहनों को निमित्त जो बनाया बाबा ने, उसके लिए हम उनका भी बहुत शुक्रगुजार करता हूं। ओम शांति।
रितेश भाई बिलासपुर, पंकज भाई अहमदाबाद के तैयार रहे।
ओम शांति। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, मेरा अनुभव ज्ञान में आने से संबंधित है और उस अनुभव के आधार पर ही मैं ज्ञान में आया और बाप पे निश्चय बढ़ा। तो सबसे पहले ज्ञान में हमारे यहाँ मामा जी थे जो 28 साल से ज्ञान में है अभी, और तो हम बचपन से ही वो हमको सेंटर्स वगैरह में लेके जाते थे, खासकर गुरुवार को, तो टोली वगैरह भोग हमको बचपन से ही मिलता था, माना बाबा का परिचय हमको बचपन से ही मिल गया था, लेकिन कुछ भी हमको समझ में नहीं आता था ज्ञान। और हमने अभी तक इस उम्र में आ गए हैं, हमने कभी भी मामा जी को ना तो सोते हुए देखा है ना सुबह उठते हुए, पता ही नहीं चलता, इतना उनका बाबा में प्रेम है। तो अनुभव यही था उस पे। तो धीरे धीरे हम, तो हमारा छोटा भाई जो था वो बुरी संगत में पढ़ के थोड़ा सा बिगड़ गया था, तो हमने उन्हीं को ले जाके सेंटर पे आना चालू किया, और आते आते फिर उनकी स्थिति पूरी सुधरी। उनकी स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि वो रात भर सोता नहीं था, रात भर, और उसके साथ साथ मेरे को और मम्मी को भी जागना पड़ता था। धीरे से हमने उसको सेंटर्स में लाना चालू किया और उन्होंने कोई विशेष योग नहीं किया, कुछ भी नहीं किया उसने, कुछ भी विशेष, केवल बाबा की मुरली सुनी बस, और उनका 7 दिन का कोर्स हुआ। इसी से उसकी पूरी स्थिति सुधर गई और वो एकदम ठीक हो गया। ओम शांति।
जो भाई जा रहे हैं उनको मैं बता दूं कि अभी अनुभव की कड़ी में 2-3 ही रहे हैं, उसके बाद फरीदाबाद से एक कुमार भाई आए हुए हैं जो आपको थोड़ा सा जादू का दिखाएंगे, तो इसीलिए आपके ध्यान पर रहे तो आप यहाँ बैठे रहेंगे। पंकज भाई अहमदाबाद, हमने आपका नाम बता दिया, आप सीधा अनुभव शुरू कीजिए।
ओम शांति। मेरे मुख्य 2 अनुभव हैं, एक योग का प्रयोग और इस कुमार भट्टी का अनुभव। पहले योग के प्रयोग से शुरू करेंगे। मुझे आज से 8 साल पहले किडनी स्टोन या पथरी हुई थी, उसमें मुझे कुछ लाभ तो नहीं हो रहा था, पर जब से बाबा का ज्ञान मिला और मुरली सुनी, उसमें एक पॉइंट बाबा ने कही थी कि बच्चे तुम देह से न्यारे हो जाओ तो मैं तुम्हारे देह का भी ध्यान रखूंगा। बस मैंने यही किया, मैं देह से न्यारा जब भी 10 मिनट के लिए हो जाता था तो अगले 10 मिनट में मेरी पिछले 1 साल में 3 पथरियां निकल चुकी है। ये एक्चुअल में ये था मेरा योग का प्रयोग का अनुभव, और अब है इस कुमार भट्टी का अनुभव। मैं इस कुमार भट्टी में आया था 2 प्रश्न लेकर। एक था कि बाबा बार बार कहते हैं मुरली में कि निश्चय बुद्धि विजयंती, और दूसरी बात पवित्रता को ज्यादा फोकस। पवित्रता तो पहले से ही पसंद थी, पर उनकी महीनता को जानने के लिए इस भट्टी में दोनों बातें हो गई। एक चक्रधारी दीदी ने हमें जैसे निश्चय बुद्धि विजयंती की महीनता बताई और दूसरा पवित्रता का बल, और जैसे सूरज भाई ने उस दिन भट्टी में हमें कुमार भट्टी में कहा कि पवित्रता एक ऐसा बल है जो दूसरी शक्तियों को खींचता है, और आज तो सचिन भाई ने भी पवित्रता की काफी अच्छी महीनता बताई। तो बस मेरा यही अनुभव है कि आप अच्छे से भट्टी कीजिए, उनसे आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। ओम शांति।
हम अनुभवों की कड़ी को यहीं समाप्त करते हैं, समय भाग रहा है, और मैं आप सभी को इतना ही कहूंगी आप सबकी तरफ से कि हमारी दादियां, हमारे वरिष्ठ भाई वरिष्ठ बहनें जिन्होंने आपको समय देकर बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई हैं, हम सब उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि आप बाप दादा ने और प्यारी दादियों ने, आदरणीय मुनि बहन ने जो इस भट्टी की यहाँ पर विशेष रूप से आपके लिए आयोजन किया और आप यहाँ पधारे, आपको ऐसे वातावरण में रहने का मौका मिला, उसके लिए हम वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। अभी मैं जो फरीदाबाद से आए हुए भाई हैं, वो अपना यहाँ पर कुछ बीके मैजिक की कुछ चीजें वो दिखाना चाहते हैं, और उनसे अनुरोध है कि 15 से 20 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे। भाई कहाँ? हाँ, जब तक वो अपने भाई आए तब तक हमारे योग रतन भाई एक गीत गाएंगे।
ओम शांति। सबने बहुत पावरफुल भट्टी की है, अपने अंदर बहुत ही अच्छे से पावर भरी है, तो वो शक्ति सबने जो भरी है, हम सब एक दूसरे के बाबा ने भाई भाई के हमें रिश्ता दिया है, तो हम सब मिल करके अपने मित्रों को जो हमारे हमजिन्स हैं और जो दुनिया में जो हमारे बाबा के बच्चे हमारे जैसे हमजिन्स हैं, उन सबको क्या संदेश देना है, ये दुनिया को कैसे बनाना है, ये संदेश देते हुए ये बहुत सुंदर सा गीत है।
हरे संत कहे प्रभु कहे, परमात्मा है जिनके संग में, अंत में जीत उसी की रहे। आ जा रे भले कितने लंबे हो रस्ते हो, थके न तेरा यतन हो। आ जा रे सुन ले पुकार जगरिया, रहना ये रस्ते तरसते हो। तू आ जा रे इस धरती का है राजा तू, ये बात जान ले तू, कठिनाई से टकरा जा तू, नहीं हार मान ले तू। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है अपना अंबर है रे। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है अपना अंबर है रे। तू आ जा रे
जो बात हमारे मन में है, सारी दुनिया जो चाहती है, सारे विश्व के युवा जो चाहते हैं कि ये विश्व अच्छा बन जाए, हमारे हिसाब से बन जाए, सब कुछ अच्छा हो, वही हम उनको बताएं कि हम भी यही चाहते हैं, और हम सब मिलकर ऐसी दुनिया बनाएंगे, हम सब कुमार मिलकर।
सुन लो रे मितवा, जो है तुमरे मन में वो ही हमरे मन में, जो सपना है तुम्हारा सपना वो ही हमारा है जीवन में हाँ चले हम लिए आशा के दिए नैनन में दिए हमारी आशाओं के कभी बुझ न पाए कभी आंधियां जो आके उनको बुझाए ओ मितवा सुन मितवा तुझको क्या डर है रे ये धरती अपनी है अपना अंबर है रे ओ मितवा सुन मितवा तुझको क्या डर है रे ये धरती अपनी है अपना अंबर है रे तू आ जा रे हम सब मिलकर इस प्रकृति को सकाश दे रहे हैं इस पूरी विश्व को सकाश दे रहे हैं और उससे ये प्रकृति पावन बन रही है तो ये पावनता की खुशबू चारों ओर फैल रही है इस प्रकृति में सुन लो रे मितवा पुरवा भी गाएगी मस्ती भी छाएगी मिलके पुकारे तो पूरों वाली जो रूप है आएगी हाँ सुख भरे दिन दुख के बिन लाएगी हम तुम सजाए आओ रंगों के मेले रहते हो बोलो गाए तुम यो अकेले ओ मितवा तुम मितवा तुझको क्या डर है रे ये धरती अपनी है अपना अंबर है रे ओ मितवा सुन मितवा तुझको क्या डर है रे ये धरती अपनी है अपना अंबर है रे तू आ जा रे